ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, 3-ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਲੋਏਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦਾ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ, 801 ਬੋਵੇ ਡਰਾਈਵ, ਵੈਸਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-450-2828, 905-450-2828।
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੇਸਿਸ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ। 3 ਸਾਲ ਲਈ 9 ਵਿਆਜ,
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 9058747471।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਰੇ ਵੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ CNE ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਸ 28 ਤੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਡ ਦੇਖੋ ਜਾਂ election.ca ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ election.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1-800-463-6868 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਮੇਰੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਕੀ ਸੇਵਿੰਗ $400 ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ $350,
ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਿਰਫ $100,
ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਬਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਸੇਵ ਕੀਏ ਹੈ $1,775।
ਕਿਆ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਆ, ਮੁਝੇ ਵੀ ਗੁਰ ਸਿਖਾਓ ਨਾ।
ਕੋਈ ਬਾਤ ਸਾਦਾ ਸੀ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ 2 ਗਾੜੀਆਂ ਔਰ 1 ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਨ ਸਭ ਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲਾ ਕਰ ਮੈਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਦੂ ਕੀਆ ਹੈ ਆਲ ਸਟੇਟ ਪਿਕਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਾਸ਼ਾ ਨੇ। ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਾੜੀ ਔਰ ਘਰ ਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੇ ਖੂਬ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ, ਆਲ ਸਟੇਟ ਪਿਕਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਾਸ਼ਾ, 6472903773 6472903773।
ਓ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ,
ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਖਤਮ।
ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ?
ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲਸ, ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ, ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਦੀਆਂ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸਸ, ਕੰਪਨੀ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਟਰਕਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ।
ਇਸ ਚਲਾਕ ਬੈਂਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੌਬਸ US ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਜੌਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
ਕਾਰਨੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਫ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂ।
ਦਿਸ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਾਟ ਟੂ ਯੂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ।
ਸ਼ਿਰਾਜ ਸ਼ਫੀਕ, ਜਿਨਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ, ਲਾਸਟ ਮਿਨਟ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਯਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼, ਸਭੀ ਕੇ ਲਿਏ ਸ਼ਿਰਾਜ ਸ਼ਫੀਕ, 416-502-8000, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10845, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਓਨਡ ਐਂਡ ਆਪਰੇਟਡ।
ਇਨ ਸਭ ਕਾਮੋ ਕੇ ਲਿਏ ਤੋ ਮੁਝੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੜੇਗਾ।
ਕੌਨ ਸੇ ਕਾਮ?
ਵਹੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਰ ਪਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵਲਰੀ ਕਾ ਖਾਸ ਕਾਮ ਅਭੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁਆ।
ਬਸ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬਾਤ, ਪਾਇਲ ਜਿਵਲਰਸ ਪੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਕੀ ਜਿਵਲਰੀ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਨ ਸਭ ਮੇਂ ਹੀ, ਦੁਬਈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਯਹਾਂ ਕੀ ਤਮਾਮ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਵਲਰੀ।
ਮੁਝੇ ਉਨਕਾ ਐਡਰੈਸ ਬਤਾਓ, ਮੈਂ ਆਜ ਹੀ ਇਹ ਕਾਮ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਤੀ ਹੂੰ।
ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਇਲ ਜਿਵਲਰਸ ਕਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 2720 ਨਾਰਥ ਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵ, ਯੂਨਿਟ 42, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਪਾਇਲ ਜਿਵਲਰਸ ਕੇ ਅਸਲਮ ਭਾਈ ਕੋ ਕਾਲ ਕਰੇ ਨਾ ਐਟ 905-790-7879, ਦੈਟ ਇਜ਼ 905-790-7879।
विलेज टेस्ट पूरे ओंटारियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल चाइनीज बारबेक्यूज ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में बे इंतहा वैरायटी है। बेहतरीन फीस्ट एंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे। After Mississauga, they are in Oakville as well. Village Taste, 905-232-3663. Village Taste.
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ।
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
Ultimate Hearing Solution, No Obligation Complimentary Hearing Test.
Hearmax Hearing Center, call Shiraz 416-792-8792.
Ringing, buzzing, hissing, time to get your hearing checked.
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
Spear and McCabe Menswear, fully vertical operation, direct from factory to customer. Quality compare कर सकते हैं आप Harry Rosen, Burberry और Hugo Boss से. 100% Italian wool suits from $249.99. 100% Egyptian cotton shirts from $29.99. 100% Italian wool trousers from $49.99. We have moved to a new location in Heartland Town Center, 775 Britannia Road West, Unit 7B, Mississauga पे. हम Sundays को भी open हैं. इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कीजिए एट 905-670-3388 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट spearandmcay.com.
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कढ़ाही, शिनवारी गोट कढ़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी फर्म ज़फर प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदेद कहना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह आपसे बात होगी। ऑफ कोर्स इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट कनाडा का मामला है और आज सुबह एक हलचल मची हुई थी एडिस्टन में। आपको पता ही है कि डगफोर्ड साहब ने बड़े अच्छे तरीके से वहां पे बैटरीज की गाड़ियों का और होंडा का जो प्लांट है, बड़ी सेलिब्रेशन हुई थी कुछ अर्सा पहले। तो एकदम से ये न्यूज आई कि जापान के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें क्या खबर थी कि 90% ऑफ बिजनेस वो मूव करेगा टुवर्ड्स अमेरिका और टैरिफ्स के बचत के लिए, मगर फिर उसके बाद इसकी रिजेक्शन भी आ गई। हम इसकी बात करेंगे, हम कनाडा के इलेक्शन की बात करेंगे और दोनों इस वक्त तमाम के तमाम लीडर्स जो हमारे इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तमाम पार्टीज के तमाम ओटावा में हैं। और जाहिर आपको पता ही है कि जो एक डिबेट है, फ्रेंच डिबेट आज है, मार्क कार्नी साहब को कहा जाता है कि यकीनन उनको एक एज दिया जाएगा। आई वाज थिंकिंग कि बड़ी बात है कि दिनों में उन्होंने फ्रेंच को पे अबूर हासिल किया है और जब बल्कि उनको पता भी है कि वीकनेस है, मगर हर जगह पे वो फ्रेंच में बात करना जरूर, उन लोगों से कम्युनिकेट करना जरूर चाहते हैं। तो बहरहाल इसके बारे में बात करेंगे। तकरीबन 3:30 बजे के करीब मेरे साथ शामिल होंगे जनाब डॉक्टर मुसा हैदर साहब, शामिल होंगे, लिखते भी हैं, नेशनल पोस्ट में लिखते हैं और हमारी कोशिश होगी कि इलेक्शन के हवाले से हम उनसे आपकी बातचीत करा सकें। आज के प्रोग्राम में दो चार चीजें और भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है, एक गुड न्यूज भी आपके साथ शेयर किए देती हूं। अगेन किसी पॉलिटिकल ग्राउंड पे नहीं, जिन लोगों ने हमारे इंटरव्यूज देखे यहां पे, पियर पॉलियट साहब स्टूडियो में तशरीफ लाए थे और मुझे याद है माजिद भाई और ये लोग बड़े मतलब कॉन्फिडेंस से कहते थे कि कार्बन टैक्स खत्म हो जाए तो आपका आप रिसेशन पे कंट्रोल पा सकते हैं और बहुत सारा हो सकता है, मगर बस हम समझने के लिए कायल ही नहीं थे बिल्कुल इस बारे में। जस्टिन ट्रूडो साहब के दौर में जो भी हुआ आपके और हमारे नोटिस में ही है, मगर मार्क कार्नी साहब जब तशरीफ लाए तो ही डिड अ वेरी वाइज डिसीजन कि उन्होंने कार्बन टैक्स को एलिमिनेट किया जिसकी वजह से आपको पता ही है गैस की कीमतों में जिस हद तक कमी हुई है वो मेरे नोटिस में भी है और वो आपके नोटिस में भी है। यकीनन आज एक जो रिपोर्ट है ये जिसको मैं शेयर करना चाहती हूँ कि कनाडा में जो महंगाई की शरह है ये मार्च के महीने के जो स्टेटिस्टिक्स आए हैं एक्सपेक्टेड से बहुत कम आए हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और एक कैनेडियन जिसको अमेरिका चाहता है कि मतलब उसको कनाडा से अमेरिका भेज दिया जाए, यंग लड़का 18 साल की उम्र में, और मैं वही सोच रही थी आपको तो लुईजी मैग्नाय के बारे में भी हम बात किया करते होते हैं, बहुत सारे बहुत इंटेलिजेंट माइंड्स जो होते हैं अगर उनको सही डायरेक्शन ना मिले तो वो बिखर भी जाया करते होते हैं। एंड दिस यंग मैन 18 ईयर्स की एज में कंप्यूटर में और मैथमेटिक्स में ही वॉज जीनियस, ही इज जीनियस, और जाहिर है उसी पे उसने कंप्यूटर पे ग्रास्प हासिल की और किस तरह से बिटकॉइन का और ये फ्रॉड हुआ अल्टीमेटली, मतलब अब तक 100 दिन चोर के 99 दिन चोर के तो एक दिन तो साथ का हुआ ही करता होता है, ही गॉट कॉट। कनाडा के सिस्टम से उनकी जो लॉयर्स हैं वो कितने मायूस हैं, मगर वो कहता है कि मतलब बिटकॉइन और ये लॉ नहीं है, लॉ इज लॉ, तो मैंने तो उसी पैरामीटर में रह के बात किया है। और इसके बारे में भी हम आज के प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे और दाई बाई की बात की जाएगी। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का। आज एक कॉल का मैं तस्करा करना चाहती हूँ। इस यंग गर्ल ने मुझे जब फोन किया तो एंड शी सेड यू मस्ट बी गोइंग थ्रू द डिफिकल्ट टाइम एज वेल। आई सेड ऑफ कोर्स इट्स विद एवरीबॉडी एंड वी आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द डिफिकल्ट टाइम, बट वहां से बात हुई कि मैंने कहा नो नो, मैं पूरा का पूरा क्रेडिट देती हूँ कि हमारे एंड यूजर ने बहुत तावन दिया हमें, बिजनेसेस ने जो वॉक इन बिजनेस थे उन्होंने बहुत तावन दिया, उनका बहुत शुक्रिया। और सबसे बढ़ के जाहिर है हमारे तमाम के तमाम लिसनर्स जो हैं वो इन बिजनेस पीपल के पास जब पहुंचते हैं एंड दैट इज द स्ट्रेंथ, वरना जो आदमी भी एडवर्टाइज करता है वो क्यों एडवर्टाइज करेगा। आई थैंक यू वेरी मच ऑल आवर लिसनर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू वेरी मच। और यहां से मैं आपको एक और एक दो स्पॉन्सर्स के बारे में जिक्र कर देती हूँ। मेगा मनी एक्सचेंज, आज डॉलर का एक्सचेंज रेट 200 रुपए आपको मिला, $200। मेगा मनी एक्सचेंज आज ओपन है और शबाहत एंड मिसेस शबाहत आज आप रकम भेजिए, 7 बजे तक उनका ऑफिस खुला है, कल सुबह आपकी फैमिली आपको बताएगी कि रकम उनके पास पहुंच गई। दे आर रिलायबल। एक बात, क्योंकि रिसेंटली मेरा एक एक्सपीरियंस है कि समबडी फ्रॉम पाकिस्तान कॉल्ड मी, एंड कैनेडियन है तो दे वांटेड टू ट्रांसफर, तो इट वाज थर्सडे जब उन्होंने कॉल किया था। आई सेड यस दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज जाहिर है जो हमारा पैरामीटर है वो तो यही है ना कि किसी भी क्लाइंट के बारे में जब हमें कॉल मिलती है वो हमारा एक फीडबैक हुआ करता है, जिसमें बहुत से लोगों का एक खास चीज के ऊपर उनका रद्द अमल है, मगर मैं आपको इतना बताती हूँ कि बाज बिजनेसेस बहुत खतरनाक हुआ करते होते हैं, या सेंसिटिव का लफ्ज इस्तेमाल करूं तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज मनी ट्रांजैक्शंस जो हैं उसके लिए फिनट्रैक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कनाडा की इन्वॉल्व है, बिकॉज पूरी दुनिया में दे डेफिनेटली वांट कि कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। तो आपको पता ही है कि बैंक्स के ऊपर कितने स्ट्रिक्ट हैं, और इसी हवाले से ये जो मनी भेजने वाले लोग हैं ये लोग भी बाकायदा रजिस्टर्ड हुआ करते होते हैं, दिस इज नॉट के वो ऐसे पैसे भेजते हैं। तो जब बिजनेस की बात हो रही होती है तो वहां पे दे आर वेरी सीरियस, जाहिर है वहां पे हर इंसान की इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। मिसाल के तौर पे मैंने रकम भेजनी है, दे विल डेफिनेटली नीड माय ड्राइवर लाइसेंस जस्ट टू मेक श्योर कि आई एम कैनेडियन और मेरा ड्राइवर लाइसेंस है, मेरी शिनाख्त क्या है, और हर चीज यहां पर जो है वो रिकॉर्ड में होती है कि कौन पैसे भेज रहा है, ताकि खुदा न खास्ता कहीं कुछ हो तो उस चीज को बैक ट्रैक किया जा सके। But otherwise, I never got any complaint about them. They are wonderful people. They do their business with due diligence. Mega Money Exchange 9052794754 उनका नंबर है। यहां से मैं आपको मेगा मनी एक्सचेंज के बारे में बात कर दिया। अभी मुझे एक और कॉल मिली थी डॉक्टर नाजिया के बारे में कि आप फीमेल डेंटिस्ट है कोई जिसकी किसी को जानती है। डॉक्टर नाजिया इज द बेस्ट इन वेस्ट एंड की तरफ, बिकॉज शी हैज 3 क्लिनिक्स, ऑल द 3 क्लिनिक्स आर इन द वेस्ट एंड, वन इज इन ब्रैम्पटन 150 येलो एवंस पर, एंड ऑफकोर्स उसी क्लिनिक की सक्सेस है दैट शी ओपनड अनदर क्लिनिक विच इज फाइनेंशियल ड्राइव एंड मिसिसागा रोड के ऊपर 65 माउंट पैलियर के ऊपर, बिल्कुल आप इनके क्लिनिक को मिसिसागा रोड से देख सकते हैं, डेंटिस्ट्री ऑन मिसिसागा के नाम से। एंड नाउ रिसेंटली शी ओपन्ड अ थर्ड क्लिनिक विच इज ऑन रिजवे ड्राइव, रिजवे प्लाजा में है। ڈاکٹر نازیہ رحمان کے ایسوسیٹس یہاں جب اسٹوڈیو میں آئے تو انہوں نے کہا کہ کینیڈا میں آف کورس اگر یہ بینیفٹ ہے کہ اگر آپ 18 سال کی کم عمر کے ہیں یا 65 ایج آپ کی ہے تو آپ کینیڈین ڈینٹل جو پروگرام ہے اس کا بینیفٹ لے سکتے ہیں. دین آپ کے امپلانٹس, آپ کی ڈینٹل ٹریٹمنٹس جو ہے, ناٹ دا کاسمیٹک وغیرہ, کہ میں کہوں کہ جی نہیں ڈینچر نہیں, آئی جسٹ وانٹ ٹو امپلانٹ, تو دیٹ از اے ڈفرنٹ بال گیم. مگر بیسک جتنی سروسز ہیں, دانت نکلوانا ہے, ڈینچرز لگوانا ہے, یہ از ایبسولیوٹلی کورڈ بائی دا گورنمنٹ. تو کاشف صاحب از اے ونڈرفل مین, انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی سینئرز ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے گورنمنٹ کا ایک فارم فل کرنا ہوتا ہے. ہی سیز آئی کین ہیلپ یو آؤٹ. اینڈ ڈاکٹر نازیہ, آپ کسی بھی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں, آئی گارنٹی شی از دا بیسٹ ون. تو وہی بات ہو رہی تھی کہ پوچھا کہ ڈو یو نو اینی فیمل ڈینٹسٹ, آئی سیڈ شی از اے ونڈرفل ڈاکٹر ان دا ایسٹ ویسٹ اینڈ پہ, میں آپ کو کہتی ہوں شی از دا بیسٹ ون, اینڈ یو جسٹ گو دیئر, میٹ کریں آپ ان سے اور آئی گارنٹی کہ یو ول بی مور دین سیٹسفائڈ. ڈاکٹر نازیہ کا آپ نمبر نوٹ کر لیجیے, 9058720011 8720011. اگر آپ کو کاشف بھائی سے بات کرنا ہے تو بھی مجھے کال کر لیجیے گا, آئی پرووائڈ یو ہز نمبر ایز ویل. آج کے پروگرام میں یقیناً میں جیسے آپ سے بات کری تھی تو ایک چیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کری تھی, پی ایف پالیو کے ایک دو انٹرویوز جب ہوئے, ہی کیم ان دا اسٹوڈیو یا ایک دفعہ آن ایئر اسکائپ کے تھرو ہمارے ساتھ آئے, تو انہوں نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ آپ یہ جو آپ نے 20% یہ جو گیس ٹیکس آپ نے لگایا ہوا ہے نا, اس کو ختم کر دیں. پھر وہ یہ کہتے تھے کہ ٹیکسز کو کم کیا جائے, انفلیشن کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو ایز اے ہول چیزوں کو کنٹرول کیا جائے. ظاہر ہے جناب ٹروڈو صاحب, کوئی بھی پرائم منسٹر اکیلا فیصلہ نہیں کرتا, ان کی کیبنٹ کے لوگ ان کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں, ان کے مشیران ان کے ساتھ ہوا کرتے ہوتے ہیں. مگر مارکانی صاحب نے آنے کے بعد, اچھا میں ایک اور بھی چیز کمپیرزن پڑھی تھی, دیئر پالیسیز آر آلموسٹ سیم. پیئر پالیو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنے نئے گھر بنانے ہیں, ان کے اوپر میں جی ایس ٹی کی چھوٹ دینا چاہتا ہوں, نئے بائرز کو, نیو ہوم بائرز کو ہم جی ایس ٹی کی چھوٹ دینا چاہتے ہیں. مارکانی بھی ایگزیکٹلی یہی اس وقت بات کر رہے ہیں, اور آپ دیکھ لیجئے گا مارکانی صاحب جب پرائم منسٹر بن کے آئے تو انہوں نے جب کاربن ٹیکس کو ختم کیا تو گیس کی قیمت کا کتنا واضح فرق پڑا اسی رپورٹ پر. پھر وہ ایک اور بھی بات کہتے تھے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ آپ کم کر کے دیکھیں, دیٹ ول آلسو ہیلپ الاٹ. آج کی جو رپورٹ آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کینیڈا میں سالانہ مہنگائی کی شرح فروری میں 2.6% تھی اور جنوری میں 1.9%. اس کا مطلب فروری میں ہمارا جو تھی اسٹیٹسٹکس کوئی اتنے حوصلہ افزا نہیں تھے, مگر اب اگر آپ مارچ کے مہینے میں آ جائیں تو کہاں فروری میں 1.6, فروری میں 2.6, اور اگر آپ مارچ کے مہینے میں آ جائیں تو مارچ کے مہینے میں یہ شرح جو ہے وہ اور زیادہ گری ہے, جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انفلیشن جو ہے تھوڑی کسی حد تک قابو میں گئی ہے. ایئر ٹرانسپورٹیشن, اگر آپ قیمتوں کی کمی کا محسوس کرتے ہیں, آف کورس ایئر ٹرانسپورٹیشن کی قیمت, آپ کا جب گیس کی قیمت کم ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت کا فرق آیا, تو ایئر ٹرانسپورٹیشن اس میں تقریباً مارچ میں پچھلے سالوں کے مقابل تقریباً 12% کی کمی آئی ہے, فروری میں 4.4% ایئر ٹرانسپورٹیشن کے کرایوں میں. اسی طرح وہ کہتے ہیں اگر آپ نے سیلولر فون لینا ہے تو جو آپ کی کمپنیز ہیں وہ آپ کو بہترین ڈیلز دے رہی ہیں جس میں آپ کو ڈیٹا بہت پرووائڈ کریں, مگر انہوں نے اپنے دام نسبتاً کم کر لیے. اگر آپ نے سیل فونز خریدنے ہیں تو اس کی قیمت بھی نسبتاً کم ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں تقریباً سیل فونز اور اس میں تقریباً 8.8% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے. جو اسٹیٹسٹکس کینیڈا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری میں جاری پروموشنز کے باعث صرف فروری اور مارچ کے دوران موبائل فون پلانز کی قیمت میں 6.8% تک کمی ہوئی ہے. مینیو لائف انویسٹمنٹ مینجمنٹ کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ ماہرین معیشت کا اندازہ تھا کہ 2024 چھٹیوں کے دوران جو جی ایس ٹی ریبیٹ کے خاتمے اور امریکی شراب اور فوڈ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ مہنگائی کو بڑھا دیں گی, لیکن پیٹرولیم کی مصنوعات پر کاربن کی ٹیکس کی کمی نے ان تمام چیزوں کی پرائسز کے اوپر براہ راست افیکٹ کیا ہے. और उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि बैंक ऑफ कनाडा को बुनियादी महंगाई के हवाले से जो बैंक ऑफ कनाडा के फैसले हैं वो भी एतमाद देंगे और देखिए कल 16 तारीख है, कल क्या फैसला आता है, शरा सूद के बारे में क्या फैसला आता है। बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद इस दफा इंटरेस्ट, मगर इस रिपोर्ट के जायजे में लेट्स सी इफ थिंग्स चेंज और नॉट, मगर वो ये कहते हैं कि अगर कल इंटरेस्ट रेट ना भी कम हुआ तो इस साल के आखिर तक दो दफा इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफ कनाडा जरूर कम करेगा, जो कि यकीनन शरा सूद में कमी या बरकरार रहने के इम्कानात में उलझन है। और अगर आज की रिपोर्ट को बैंक ऑफ कनाडा कंसीडर करता है तो लेट्स सी कि हाउ थिंग्स वर्क आउट। जो वो कहते हैं कि शरा सूद में कटौती या बरकरारी के बायस मुसलसल चीजों में मतलब कोई स्टेबिलिटी नहीं आप देख सकते। मार्च में जो इंडेक्स हैं वो ये कहते हैं कि महंगाई के अहम पैमाने टैक्स में तब्दीलियों को शामिल नहीं करते और मार्च में अमूमी महंगाई में 0.3% इजाफा हुआ, लेकिन अगर इसे सीजनल एडजस्टमेंट के साथ देखा जाए तो यकीनन ये कोई बहुत बड़ी तब्दीली भी नहीं है। और ये मंगल के दिन आज ही रिपोर्ट शेयर की गई है कि द एक्सपेक्टेड रेट फॉर वाज डिफरेंट, मगर आज एज कम्पेयर टू फरवरी हमारा जो सिस्टम है वो निस्बतन बेहतर है। लेट्स सी इसी रिपोर्ट के कुछ को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो गवर्नमेंट है, बैंक ऑफ कनाडा है, वो कल क्या फैसला करता है। ये तो हो गई हमारी एक बात। यकीनन आज आपके नोटिस में भी सुबह सुबह ये खबर आ गई होगी एंड इट वाज तकलीफ दे खबर थी कि होंडा कनाडा ने कहा है कि वो अपना जो प्लांट है वो बंद करने जा रहे हैं, एलिस्टन का प्लांट बंद 100% नहीं करेंगे बट 90% जो गाड़ियों की सिस्टम है उसको वो मूव करना चाहते हैं टूवर्ड्स अमेरिका की तरफ टैरिफ्स से बचने के लिए। मगर बाद में इसकी जनाब फोर्ड ने कहा कि नहीं, ऐसी कतन कोई खबर नहीं है। और मार्क कार्नी साहब से भी जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी यकीनन इन होंडा को मजीद रिलैक्सेशन देने की बात की है, यकीनन इसका अभी थोड़ी देर के बाद हम जिक्र करेंगे। डॉक्टर मुर्सा हैदर मेरे साथ होंगे थोड़ी देर में। और मैं एक और चीज जो आपके साथ शेयर करना चाह रही थी वो अबाउट इलेक्शन के हवाले से, यकीनन डॉक्टर साहब आते हैं तो हम ज्यादा ही तफसील में आपकी तरफ जाएंगे। अगर आप मार्क कार्नी और जनाब पियर पॉलियर दोनों के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो मुझे पॉलिसीज में कनाडा में ना इस वक्त एक फियर है, टैरिफ्स का फियर है। बहुत से लोग बात करते हैं कि चेंज चेंज चेंज। अगर मार्क कार्नी, अगर पियर पॉलियर की बात करें कि पिछले दो साल में जब आप देखते हैं कि हमारे कनाडा के हवाले से कंजर्वेटिव्स, कॉमन सेंस कंजर्वेटिव्स के जो पोल्स से बहुत हाई थे तो वो एक ही बात कर रहे थे, चेंज की बात कर रहे थे, मगर चेंज के साथ साथ वो कहते थे कि लोगों की जिंदगियों को अगर आसान करना है तो एचएसटी के हवाले से बात करते थे वो, अगर बात करते थे तो वो कार्बन टैक्स की बात करते थे वो, अगर बात करते थे तो ऑफकोर्स जिन इलाकों में क्राइम बहुत ज्यादा है उन क्राइम के हवाले से वहां बात करते थे। बल्कि आज जब उन्होंने कहा कि जो लोग क्रिमिनल्स हैं उनको जेल में हमेशा से बंद कर दिया जाएगा या ज्यादा अरसे के लिए बंद किया जाए, सजाएं कड़ी कर दी जाएंगी, जिस पे उन्होंने कहा इट्स वेरी डेंजरस, मगर जाहिर है जो लोग इंतहाई क्रिमिनल हैं और बार 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 अगर वो जुर्म करते हैं तो फिर उसका कोई हल तो होना चाहिए। तो बहरहाल ये एक सर्वे में आपके साथ, सर्वे की एक रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। मगर मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस पूरे के पूरे सर्वे को आपको शेयर कर सकूं, दो एक कंसर्न्स को शेयर कर लेती हूं बिकॉज 3:30 अंजुम कुरैशी साहिबा ने हमारे साथ, 3:30 किसी ने आना है हमारे साथ और उसके बाद फिर हमने लेके जाना है, हमारे साथ होंगे डॉक्टर मुर्सा हैदर साहब होंगे। अगर कनाडा में इस वक्त जिक्र किया जाए, जाहिर है चेंज 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 की बात होती चली जा रही थी, ऑल ऑफ सडन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने चार्ज ले लिया और फिर टैरिफ आ गए और फिर उसके बाद इस्तेहकाम जो था वो प्रॉब्लम बन गया हमारा, कि स्टेबिलिटी वॉज अ बिग कंसर्न, कि अब जाहिर है हमारे सारे बॉर्डर से हमारी तमाम की तमाम जो ट्रेड होती है दैट इज बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा, और जिसकी वजह से कनाडा हैज स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका भी रिसोर्सेज की तलाश में हो गया। अब वो कहते हैं कि अभी एक सर्वे किया है और कनाडा के लोग अगर वो देखा जाए तो 47% लोग ऐसे हैं जो चेंज चाहते हैं, और अगर आप जाहिर है जॉब सिक्योरिटी, अगर आप इन्फ्लेशन की बात कर लें, अगर आप घरों की बात कर लें, और 46% ऐसे लोग हैं जो इस्तेहकाम की बात करते हैं यानी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अब वो कहते हैं कि वो लोग जो तब्दीली चाहते हैं विच इज 45%, अगर 45% जो तब्दीली चाहते हैं उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो 45% में से 47% कहते हैं कि पीयर पॉलिएव जो है, अगेन 45% जो तब्दीली चाहते हैं, अब 45% को हम आगे फर्दर ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो 45 जो तब्दीली चाहते हैं उनमें से 47% ये कहते हैं कि पीयर पॉलिएव ये तब्दीली जो है बेहतर तौर पे ला सकते हैं। 20% ने कहा कि मार्क कानी जो है वो तब्दीली बेहतर ला सकते हैं, और जो लोग इस्तेहकाम चाहते हैं, आप इसका मतलब है द बिगेस्ट कंसर्न इज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जॉब की स्टेबिलिटी है, घर होने चाहिए वगैरह वगैरह। अब वो जो 46% स्टेबिलिटी चाहते हैं अगर उसका ब्रेक डाउन किया जाए जो स्टेबिलिटी चाहते हैं तो उनमें से 66% कहते हैं कि जो मार्क कार्नी है वो बेहतर स्टेबिलिटी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, वेयर एज 18% एंड दिस इज द गैप जहां पे जाहिर है बहुत सारे और फैक्टर्स भी काउंट करते हैं बट द मेन कंसर्न इज स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये जो कुछ भी टैरिफ का चक्कर चलाया हुआ है ना, आज आ गया कल चला गया, आज आ गया कल चला गया, आज हॉल्ट कर दिया, तो ये सारा का सारा ड्रामा जो है ये कनाडा के इलेक्शन तक है। वैसे इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अमेरिका और कनाडा के जो ताल्लुकात हैं, अगेन मैं कोई ज्यूम नहीं कर रही, आई जस्ट लुक एट इट, जब आप टैरिफ्स की बात कर भी लें तो मेरा ख्याल है कि थिंग्स विल बी इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, और स्पेशली अलास्का जो है ना वो बहुत बड़ा एज देगा कनाडा को कि फिर तो आपकी गर्दन के ऊपर हमारा हाथ हो सकता है, कनाडा का हाथ हो सकता है। तो आई थिंक सो, आई माइट बी रॉन्ग, मगर जिंदगी में कोई चीज इतनी पक्की भी नहीं हुआ करती होती, बट एज फार एज हिस्ट्री को देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कनाडा जो है इन टैरिफ्स की वजह से ज्यादा ये सारा का सारा जो सिनेरियोज हैं और जो स्टेज सेट है दैट इज टिल द इलेक्शन, दो हफ्ते और इसी तंगी में गुजारेंगे, लेट्स सी। अब आज का जो बॉम्बशेल गिरा था सुबह सुबह होंडा कनाडा का, तो अब देखिएगा उसका अभी तक तो कोई रिजल्ट सामने नहीं आया ना कि जापान के एक अखबार में खबर छप गई, यहां पर उस खबर के मुताबिक रिएक्शन दिया गया, फिर डग फोर्ड साहब ने अपना बयानिया दिया, फिर मार्क कार्नी साहब ने अपना बयानिया दिया, तो बहरहाल लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अच्छा बेशतर इसके कि मैं किसी को आपके साथ लेके आऊं, आई थिंक आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम द ऑफिस, डॉक्टर मुर्जा 3:30 पे हमारे पास साथ स्काइप पे होंगे, तो बेशतर इसके कि डॉक्टर मुर्जा आए मेरा दिल चाहता है कि मैं चंद एक स्पॉन्सर्स दे लूं, वेलकम बैक, ताकि हम अपनी गुफ्तगु को आराम के साथ कर सकें, एंड दिस गुफ्तगु विल बी जाहिर डॉक्टर मुर्जा के जो स्टैट्स के साथ आएंगे, नंबर्स के साथ आएंगे, कोई चीज फेक नहीं होगी, मगर इसलिए मैं चाहती हूं कि डॉक्टर मुर्जा से बात की जाए। आप भी अपने तई अपना होमवर्क जरूर कीजिएगा, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है वोट भी जरूर डालिएगा।
पेंटर्स ऑफ GTA फॉर योर होम पेंट और ऑफिस पेंट, इंटीरियर और एक्सटीरियर, पॉपकॉर्न सीलिंग को रिमूव करना, वाटर डैमेज, येलो स्पॉट्स इन सीलिंग, कॉल पेंटर्स ऑफ GTA। वाटर डैमेज में अगर येलो स्पॉट्स आपकी सीलिंग पे उनको रिमूव करके बेदाग करेंगे, टेक्सचर स्टाइल पेंटिंग विच इज द लेटेस्ट इटालियन स्टाइल पेंटिंग, या वॉल पेपर लगवाना चाहते हैं तो कॉल कीजिए टेक्सचर स्टाइल पेंटिंग के लिए Painters of GTA 6472711974 Mohammed Saleem 6472711974।
से निजात के लिए एक ही नाम, मोहम्मद सिद्दीक, ऑल द सॉल्यूशन, पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा।
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी कंसोलिडेशन करते हैं अपटू 80%। मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं, पुरसकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन। अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 4166710577।
डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे बाय डॉक्टर नाजिया रहमान, अब मिसिसागा में दूसरी लोकेशन के साथ, रूट केनाल, व्हाइट टीथनिंग, इम्प्लांट डेंटिस्ट्री, डेंटल क्राउन्स, विजडम टूथ रिमूवल, क्वालिटी डेंटल केयर पूरी फैमिली के लिए, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, वॉक इन एंड इमरजेंसी, एक्सेप्टिंग कैनेडा डेंटल केयर प्लान। डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे बाय डॉक्टर नाजिया रहमान, 3465 प्लेटेनियम ड्राइव, यूनिट 76, मिसिसागा, फोन 905-820-0900, 905-820-0900।
जी साहब, प्रोग्राम में एक दफे से खुश आमदीद देना चाहती हूँ और डॉक्टर मुर्तजा हैदर हमारे साथ आ ही गए। डॉक्टर मुर्तजा हैदर, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका?
सलाम, अल्लाह के एहसान से, सब अच्छा।
जी डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ आ गए।
जी
मैं अपना हेडफोन चेंज कर लूँ क्योंकि ऑफिस में यहाँ पे दो हेडफोन्स रखे हुए हैं, एक में से आपकी आवाज आती है और एक में से रेडियो की आवाज आती है। अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर से।
जी वाले
शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ शामिल हुए। और यकीनन आपने हमेशा अपने जितने आपके आर्टिकल्स भी आते हैं, यू डू गुड होमवर्क अपना उसका करके तमाम नंबर्स को देखते हुए चलते हैं। आज हमारे तमाम के तमाम लीडर्स इस वक्त तो ऑटवा में हैं और यकीनन पहली डिबेट जो है वो फ्रेंच में जानी है, मगर वो कहते हैं ना माइंड कंडीशनिंग। मुझे वैसे मैं एक तरफ से जो मार्क कार्नी है उनकी इंटेलिजेंस की मुतकिद हूं कि आप देखिएगा कि उन्होंने कितनी तेजी से फ्रेंच को करते हुए और वो कम्युनिकेट करते हैं, उनको बल्कि पता भी है कि अगर वीक पॉइंट्स हैं भी तो उसके बावजूद वो हर बात को फ्रेंच में जरूर कन्वे कर रहे होते हैं, मतलब टू बी ईगर टू लर्न फॉर समथिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, आज अगर हम सबसे पहले इलेक्शन की ही बात करें तो आज मैं ऑटवा में भी इन लोगों के बयानात को सुन रही थी। पियर पॉलियव यकीनन जो कनाडा में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातें हैं मुख्तलिफ इलाकों में, उनके बारे में बात कर रहे हैं, साइबर क्राइम्स के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज अ बिग डील, और हम पिछले 5-6 साल से इसके बारे में रो रहे हैं। ये रोबो कॉल्स जब आती थी लोगों की, ब्रैम्पटन में बेशुमार लोगों ने बेशुमार पैसा, न सिर्फ ब्रैम्पटन बल्कि पूरे ऑन्टेरियो में और कनाडा में लोगों ने पैसा लूज किया कि भाई ग्रैंड माँ को कॉल आई है नवासा और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई तो सोने पे सुहागा आ गया। उनका वो लोगों की उस पेन को महसूस कर रहे हैं, बल्कि जगमीत सिंह भी उस पेन को महसूस कर रहे हैं। और पियर पॉलियव जब कहा करते होते थे कि कार्बन टैक्स को आप कम कर दें तो आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, आप इंटरेस्ट रेट को ना बढ़ाएं, मैं आपसे सवाल कर रही हूं, मैं आपसे फिर उनका जवाब चाहूंगी एक आम आदमी की नजर को देखते हुए। और जब वो कहा करते होते थे कि आप HST कम कर दें, नए घर बिल्ड करने की बात करते थे तो वो कहते थे न्यू कमर्स के लिए HST, अगर आप न्यू बायर्स के लिए अगर आप HST खत्म कर लें तो डेफिनेटली थिंग्स कैन बी चेंज्ड, जो कि जस्टिन ट्रूडो साहब के मशीरान ने और उनकी कैबिनेट ने उस वक्त, जाहिर है कार्बन टैक्स वाज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट सेव करने के लिए उस हवाले से, मगर मार्क कार्नी साहब ने जब आके इमीडिएटली कार्बन टैक्स को खत्म किया तो आज की स्टैटिस्टिक्स की जो स्टैट्स आए हैं स्टैटिस्टिक्स कनाडा की जानिब से, उन्होंने कहा है कि मार्च के महीने में हमारी जो इन्फ्लेशन थी वो कंट्रोल हुई एज कम्पेयर टू फरवरी, जनवरी में 1.6 थी, फरवरी में 2.6 थी, मार्च में मेरा ख्याल 2.3 पे हम चले गए या 2.1 के ऊपर हम आ गए हैं, तो इट्स बेटर। तो मगर मैं जब देखती हूँ ना तो मार्क कार्नी की ऑलमोस्ट वही चीजें हैं जो पियर पॉलियव कह रहे हैं। पियर पॉलियव जरा इंतहाई दाई तरफ जाते हुए सजा के लिहाज से चोरों के लिए जरा इंतहाई ख्यालात रखते हैं। अब मैं आपके लिए छोड़ती हूँ कि आज की एक और रिपोर्ट भी मैं देख रही थी कि लोगों का कंसर्न है कि कितने लोग जो हैं वे तब्दीली चाहते हैं, विच इज अराउंड 45%। इस्तेहकाम ये जो टैरिफ्स ने एक और बम गिराया, मेरा ख्याल है उसने बिल्कुल चेंज कर दिया माहौल को। आप बात कीजिए।
जी बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इस कदर कहूंगा कि देखें ये जो इलेक्शंस है ना ये तो एक बड़े मुश्किल वक्त में है कनाडा के लिए, लोगों को एहसास नहीं, इसलिए कि अभी अभी धक्के और वो धचके नहीं लगे, लेकिन हमारा जो जिसको तर्ज जिंदगी है, वे ऑफ लाइफ, वो थ्रेटन्ड है इस वक्त, क्योंकि अगर ये टैरिफ्स नहीं हटाए गए तो हमारे पास वक्त नहीं है कि हम अपनी इकोनॉमी को इतनी जल्दी रिस्ट्रक्चर कर सकें। और दूसरी बात यह कि हम दूसरी मार्केट से 8-10 हजार मील दूर है। यूरोप की मार्केट जो है वो बीच में एक समंदर आता है, एशिया के साथ भी एक समंदर आता है, तो हमारे लिए काफी मसले होंगे। तो जो लिबरल्स क्या है, अपने भी पता है, बड़े मजे की बात है ना कि इन्फ्लेशन थोड़ी कम हो गई है, वो पता चला कि वो जो कार्बन टैक्स था शायद उसका भी थोड़ा बहुत हाथ हो, क्या वो नहीं है तो इन्फ्लेशन कम हो गई है। जी तो फिर इसका मतलब ये है कि जो लिबरल्स अपनी गवर्नमेंट में इन्फ्लेशन से लड़ रहे थे, वो अपने ही लगाए हुए टैक्सों की इन्फ्लेशन से लड़ रहे थे। तो ये इसमें आपको देखा कि पहले मसला भी हम खड़ा करें और फिर उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करें, जब नहीं हो तो कहें अच्छा चले वो जो मसला हमने बनाया था वो हटा देते, और फिर अचानक देखो हमने सॉल्व कर दिया। तो ये कमाल की बात है, इन्फ्लेशन भी आपने बनाई और आपके टैक्सेस से लगी, और जब टैक्सेस हटाए तो इन्फ्लेशन भी कम हो गई। तो ये जो मार्क कार्नी है, मुझे ये लगता है कि ये अगर ये लिबरल्स के जो नंबर्स हैं जो पोल्स के, अगर वो इस शिद्दत के साथ नीचे ना गिरे होते जिस शिद्दत से वो दिसंबर में थे, और फिर रिकवर ना होते, मतलब वो गिर तो गए थे पूरा, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जब तक ये टैरिफ्स की बात नहीं हुई थी, तो लिबरल्स तो बड़े नीचे गए हुए थे, तो वो टैरिफ्स की गुफ्तगू से जो है वो एक नेशनलिज्म आया कनाडा में, एक सेंस ऑफ रिएक्शन टू व्हाट द व्हाइट हाउस वाज सेइंग, तो उसकी वजह से जो है इनको दोबारा मौका मिल गया लिबरल्स को, लोगों ने कहा नहीं भाई अभी तो हम अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े होते हैं। तो वो जब इनके हालात भी थोड़े बेहतर हो गए, लेकिन जो इनकी पॉलिसीज थी जो लिबरल गवर्नमेंट की, कि हम कार्बन टैक्स हटा देंगे, हम कैपिटल गेन्स हटा देंगे, ये उन्होंने उस वक्त कहे थे कि जब इनके नंबर्स गिर गए थे। मुझे ये नहीं मालूम कि जब ये अगर हुकूमत में दोबारा आ गए और दोबारा मुस्तहकम हो गए तो वो उन्हीं पॉलिसीज की तरफ चले जाएंगे जो उन्होंने पहले लगाई थी। मतलब आप कैसे लोगों को कहेंगे कि जी हाँ हमने वो कार्बन टैक्स लगाया था और अब सारी दुनिया को बता रहे थे कि हम ये इससे बेहतर कोई पॉलिसी है नहीं, और कार्नी साहब तो शामिल थे सारे कान में, अब वो दुनिया को कह रहे कि नहीं ये मेरा ख्याल हमें इसको हटा देना चाहिए। जबकि पियर पॉलिवियर जो कह रहे हैं वो वही कह रहे हैं जो उन्होंने पहले कहा था, उनके मैसेज में पोल्स में ऊपर नीचे होने से तब्दीली नहीं आई, उनके मैसेज कंसिस्टेंट है। लिबरल का मैसेज जो है पैनिक के दिनों में बिल्कुल बदला, और जब पैनिक हट गया तो शायद वो फिर बदल जाए, और जब पैनिक बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो ऐन मुमकिन है कि जिन वजहों से लोगों में ये नाम मकबूल हुए थे उन्हीं पॉलिसीज को वो दोबारा ले आए। कोई ऐसी गारंटी तो नहीं है ना, कार्बन टैक्स इन्होंने ही लगाया था, अब जब वो अनपॉपुलर हो गए, अगर ट्रूडो साहब लड़ रहे होते अभी तो वो डटे रहते कार्बन टैक्स पर चाहे ये हुकूमत से जाते, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पूरी आवाम इसके साथ नहीं है तो उन्होंने हटा दिया। मगर ये लोग वही लोग हैं जो नजरियाती तौर पे इन पॉलिसीज के साथ मुंसलिक हैं, यानी कार्बन टैक्स का लगाना, कैपिटल गेन टैक्स को 50-75% तक ले जाना है, ये लिबरल पार्टीज की गवर्नमेंट है की पॉलिसीज हैं, और ये लोग नजरियाती तौर पे जो भी जो ये टोला लड़ रहा है, ये टोला नजरियाती तौर पे इन्हीं ख्यालात का हामिल था उस वक्त तक के जब उनको लगा कि अब तो इलेक्शन हारेंगे अगर हमने अपनी रविश या मैसेज ना बदला। अब चाहे आप पियर पॉलिवियर से इख्तलाफ करें या उनकी बात से इत्तेफाक करें, हर दो सूरतों में एक बात जो है वो मुसल्लिम है। वो मुसल्लिम बात यह है कि उनका जो मैसेज था वो पहले भी वही था और अब भी वही है, यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं है। वो पहले भी समझते थे कि हमने जो जिंदगी है, जो द कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो बहुत बढ़ा दी है कनाडा में, और काफी उसका जो अमल दखल है वो टैक्सेस की वजह से। तो वो कहते हैं कि अभी हमें सरकार को टैक्सेस कम करें ताकि लोग सांस ले सके। तो वो चाहते हैं कि मार्केट्स जो है वो खुद उनको इंसेंटिवाइज करके सहूलत निकालें। लिबरल्स चाहते हैं कि वो मार्केट्स में खुद दाखिल हो जाएं। मसलन दोनों एग्री करते हैं, पॉलिवियर भी और मार्क कार्नी भी, कि हमें घर ज्यादा बनाने। मार्क कार्नी चाहते हैं कि 5 लाख घर सालाना बने, जबकि पियर पॉलिवियर कह रहे हैं कि 3.5 लाख घर सालाना बने। हर दो सूरतों में ये 2.5 लाख घर जो हम साल में बनाते हैं उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन लिबरल जो है वो कहते हैं हम एक नई एजेंसी खोलेंगे कि जो घर भी बनाएगी या उसको फैसिलिटेट करेगी। तो अगेन लिबरल्स जो है उनमें एक टेंडेंसी हमेशा ये होती है कि वो ना सिर्फ गवर्नेंस चाहते हैं बल्कि वो बिजनेस भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम गवर्न भी करें और साथ में बिजनेस में भी शामिल हो जाएं, हम एयरलाइंस को भी रेगुलेट करें और एयरपोर्ट्स को भी ओन करें। उन दो सूरतों को जब मिलाएं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। अगर आपको लगता है कि कनाडा में फ्लाई करने के एयर टिकट्स महंगे हैं और अमेरिका में सस्ते हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि सरकार बहुत हद तक शामिल हुई हुई है एयरलाइन बिजनेस में। सरकार को निकाल दीजिए, उसकी हदें महदूद कर दीजिए, तो आपकी एयरलाइंस जो है वो सस्ती हो जाएंगी। तो ये चीजें समझने की है कि जब आप फैसला कर रहे हैं कि आपने कंजर्वेटिव की तरफ जाना है या लिबरल की तरफ जाना है, आपको ये फैसला करना होगा कि आपको मैसेज किसका पसंद है नंबर वन, और ये कि इन्होंने अपना मैसेज सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए तो नहीं अभी भी बदला, क्या ये कंसिस्टेंट थे अपने मैसेज पे। अगर आप कंसिस्टेंसी को वोट देना चाहते हैं तो एक तरफ जाएं, और अगर आपको यकीन है कि लोग जो हैं जिन्होंने अपना मैसेज बदला है वो मुखलिस हैं अपने नए मैसेज के साथ, तो बेशक उनके साथ चले जाइए।
बहुत तफसील से डॉक्टर साहब आपने इसके बारे में
बात, ये तो इख्तिसार से था, तफसील तो मैं दो घंटे और,
जितना टाइम है टाइम के लिहाज से आपने वाफर टाइम हमें दिया इस चीज को कवर करने के लिए। मैं डॉक्टर साहब जब आज देख रही थी, अभी इस्तेहकाम मेन प्रॉब्लम है। एक तो ये है कि जाहिर है महंगाई की बात, चेंज की बात करते हैं तो वो 45% इस्तेहकाम की बात, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, और ये बॉम्ब शेल हम पे गिराया गया जब टैरिफ का मामला आया। मुझे लगता है कि अभी तक तो कनाडा को रिलैक्सेशन मिली हुई है, अगर आप पूरी दुनिया इवन अगर आप मैक्सिको को भी देख लें तो कनाडा को, मगर ये हवा इसलिए भी खड़ा है और ये हवा बाय द एंड ऑफ अप्रैल तक रहेगा, बिकॉज वो कहते हैं ना किसी इलेक्शन में इंटरवीन करने के डिफरेंट तरीकाकार हो सकते हैं, ये इलेक्शन को मुतासिर करने के लिए ये हवा रखा जाएगा टिल द रिजल्ट्स कम। अमेरिका कनाडा के ऊपर इतने टैरिफ्स लगाएगा नहीं, ठीक। अगर हम ज्यादा लोगों का झुकाव, ये जो अब 43-44% के ऊपर चले गए हैं, हालांकि देयर वाज अ टाइम कि 25 पॉइंट्स का डिफरेंस था, कंजर्वेटिव्स वर हाई, मगर नाउ उसमें से वो कहते हैं 66% जो कैनेडियन हैं आउट ऑफ 46% जो 66% है वो ये कहते हैं कि जो मार्क कार्नी है वो स्टेबिलिटी देंगे नई जॉब्स को लेके आने के लिहाज से, मगर बाकी मुसीबतें दोबारा वापस आ जाएंगी, कार्बन टैक्स भी वापस आएगा और किराए भी आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे।
जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मार्क कार्नी एक बहुत ही समझदार और बहुत ही पढ़े लिखे शख्स है, इसमें दो राय नहीं है। उन्होंने अच्छी यूनिवर्सिटियों से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की, और उसके अलावा उनको एक नहीं दो सेंट्रल बैंक्स की गवर्नरशिप का मौका मिला, जिसमें सारा काम ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का होता है कि किस तरीके से आपने जो मुल्की इक्तसाद है उसको संभालना है, ये गवर्नर का काम होता है, ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट्स का काम नहीं होता। यहां अमरीका, कैनेडा और बरतानिया में ये काम बैंक ऑफ जो सेंट्रल बैंक का गवर्नर है और उसकी टीम करते, तो इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की समझ बूझ और एक्सपोजर है वो शायद मार्क कार्नी से ज्यादा कनाडा में किसी और का ना हो, इसमें कोई शक नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो अपनी पॉलिसीज उन नजरियात की बुनियाद पे बनाएंगे कि जो नजरिए उनको हमेशा से मुतासिर करते थे, जिसमें कार्बन टैक्स शामिल था। ऐसा नहीं है कि उनको ये कार्बन टैक्स की उन्होंने कभी मुखालफत की हुई है, तो अभी इलेक्शन की वजह से हो रही है ना, या ये कि वो एक बड़ी गवर्नमेंट के हामी हो, जो बड़ा फलसफा है ना, जो बड़ा डिफरेंस है, जो बड़ा जो इख्तलाफ है दोनों पार्टीज में, कंजर्वेटिव में और लिबरल्स में, वो ये है कि एक जो है लिबरल्स वो बड़ी गवर्नमेंट के कायल है, बिग गवर्नमेंट, हर शय में सरकार का अमल दखल हो और उसकी हुज्जत हो, जबकि कंजर्वेटिव्स जो है वो मार्केट्स को फेवर करते हैं कि लेट द मार्केट्स फंक्शन, और वो सरकार का जो रोल है उसकी जो हदूद और कयूद है उसको मुख्तसर करते हैं। तो ये दोनों जो है हमेशा से यही रहे कि आप देखेंगे कि लिबरल्स आएंगे तो वो जब ऑन्टेरियो में लिबरल गवर्नमेंट थी, अगर आपको याद हो, टैक्सेस बढ़ा दिए गए और जो टॉप जो टैक्स था वो ब्रैकेट थी वो 52-53% तक चली गई, तो उसमें होता यह है कि जो कुछ तबके फायदा उठाते हैं और जो वो तबका जो कि वेल्थ क्रिएट कर रहा होता है, जो कि जॉब्स क्रिएट कर रहा होता है, वो तबका बहुत मुतासिर होता है, और फिर हमें डर ये होता है कि कहीं वो छोड़ छाड़ कर निकल ना जाएंगे, कि चाहे और टैक्स लगा रहे हैं, चलो हम दुकान कहीं और चलाएंगे और यहां से बढ़ा लेते हैं और कहीं और खोलते, तो वो इंडस्ट्री ऐसी ही होती है, वो इंडस्ट्री इंसेंटिव ढूंढती है, जहां उसको इंसेंटिव मिलते हैं चले जाते हैं। सो देयर इज अ लिमिट टू बिग गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी मर्जी से टैक्सेस लगाए। तो अभी ये जो हमारे यहाँ चॉइस है ना कि कार्नी है, ओलिवियर है और एनडीपी है, इन तीनों चॉइसेस में आपको ये साफ नजर आएगा कि एक पार्टी जो है वो छोटी गवर्नमेंट चाहती है, एक पार्टी बड़ी गवर्नमेंट चाहती है, एक पार्टी उससे भी बड़ी गवर्नमेंट, एनडीपी जो है वो तो बहुत ही बड़ी गवर्नमेंट चाहती है। तो ये आपको फैसला करना है कि आपको इनमें से कौन सी चीज पसंद है। क्या आप अपने फैसले जो है वो सरकार पर ही छोड़ना चाहते हैं तो लिबरल्स की तरफ जाइए, क्या आप अपने फैसले जो है चाहते हैं कि वो बिजनेस करें और बिजनेसेस जो है और फ्री मार्केट जो है आपके लिए सहूलत पैदा करें तो आप कंजर्वेटिव की तरफ जा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हर चीज जो है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड हो, स्टेट ओन्ड हो, घर भी रेगुलेटेड हो, प्राइसेस भी रेगुलेटेड हो, तो एनडीपी आपकी चॉइस होनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये एक चीज जो मेरी नजर से गुजरी, बल्कि मैं आपके साथ भी आगे शेयर भी करती हूँ, यानी मार्कार्नी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो टैक्स अखराजात रेगुलेशंस में कमी चाहते हैं और वफाकी हुकूमत की तवज्जो को महदूद करना चाहते हैं जो कि हमारे बिल्स को कम करेगी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, छोटी हुकूमत की बात करना चाहते हैं, वो सिर्फ कार्बन टैक्स को खत्म ही नहीं करना चाहते बल्कि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी जो लिबरल का मौकफ है सुर हट के बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एक और रिसर्च आपने पढ़ी होगी 2021 के, 2015 के इलेक्शन के बाद से एक नजरिया पर हुआ, फिर 2021 के बाद से जो जनरेशन जी 21-30 साल से जो छोटी उम्र के लड़के हैं, दे यंग बॉयज, बल्कि ये हेडिंग भी आई थी पियर पोलियर हैज प्रॉब्लम, वुमेन हैव अ प्रॉब्लम विद द पोलियर पियर, उसमें कहा जाता है कि जो बॉयज हैं वो अपना घर चाहते हैं, वो उनको उनकी पॉलिसी, दे आर मूविंग एंड लीनिंग टूवर्ड्स द राइट, देयर एज द वुमेन दे आर लीनिंग टूवर्ड्स, मोर लीनिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट। ये कल परसों का आर्टिकल था और बड़ा खूबसूरत आर्टिकल था जिसमें पियर पोलियव ने बल्कि अपने आप को खुद भी उन्होंने कहा कि वो कल्चर के मुखालिफ हैं, इलीट्स और गेट कीपर्स के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। अब इलीट्स एंड गेट कीपर्स की बात करते हैं तो आज हम अमेरिका को जब डिस्कस कर रहे हैं तो बात तो इलीट्स की हो गई ना, कि एवरीथिंग इज रन बाय दोज हु आर बिलियनर्स। तो अगर आप मेरी इस बात को आप कैसे सही करेंगे?
नहीं देखें, आपकी बात बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक नहीं कि रियासत जो है वो इलीट्स के हाथ में नहीं होनी चाहिए। जिस अमेरिका में अब ये बिलियनर्स जो हैं, जैसा कि टेस्ला के मालिक जो हैं वो सरकार में कटौतियां करते फिर रहे हैं और इदारों को बंद कर रहे हैं, ये तो बहुत ही अहमकाना कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। कि ये जो ब्यूरोक्रेसीज होती है ना सरकारी, इनकी एक वजह होती है, उनको उनको इनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है, उनको 50 साल 100 साल जो है मौका मिलता है पॉलिसीज को बनाने का, उनके असरात को देखने का, और एक स्टेबिलिटी होती है इनकी पॉलिसी मेकिंग में। ये जो अभी जो अमेरिका में हो रहा है कि एक सुबह टैरिफ अनाउंस होता है, शाम में उसकी एग्जेम्पशन आ जाती है, फिर 90 दिन के लिए आउट कर देती है, ये तो पॉलिसी मेकिंग नहीं, ये तो एक ड्रामा चल रहा है कि आज ये अभी ये होगा, किसी को नहीं पता कल क्या होगा, कल सुबह फिर कुछ बदल देंगे। और अभी जब चाइना ने इनको आंखें दिखाई हैं तो उनको वक्त पड़ गया। चाइना ने कहा कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जो कि आपकी हर बैटरी में चलते हैं, हर हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में चलते हैं, बल्कि टेस्ला की गाड़ियों में भी लगते हैं, उन्होंने कहा जी अब हम एक नया परमिट सिस्टम लगाएंगे, उस परमिट के बाद आपको मिलेगा, अभी तो हम आपको शिप नहीं कर रहे। वो पता चला कि वो सिर्फ चाइना में है 90-95% रेयर एलिमेंट जो कि अमरीका की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऐसे जरूरी है, और अमरीका की जो मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, उसके लिए तो इवन मोर नेसेसरी। अब वहां रुक गए, अब वो जब रुक गए हैं तो आप देखिएगा कि इनकी सारी गुफ्तगू जो है तब्दील होगी, जब इनको एहसास होगा कि जिस जिन पे जिन जिन एलिमेंट्स पे तकिया कर रहे थे वही पत्ते अब हवा देने लगे। तो अब आप जब पोलिविया साहब की बात करते हैं तो होता यह है कि हर मुआशरे में मुख्तलिफ किस्म की सेंसरशिप्स होती हैं और वो वक्त के साथ कल्चरल एवोल्यूशन के साथ बदलती जाती हैं। एक वक्त था कि आप किसी को उन अल्फाज से मुखातिब करते थे कि जो आप बहुत ही नाजेबा समझे जाते हैं, जिनको आप दोहरा नहीं सकते, और दोहराने पे असद आप पे आप मसलों का शिकार होंगे, और अच्छी बात भी है कि ऐसे अल्फाज के जो हकारत के होंगे। लेकिन वो जो वो कल्चर है उसमें वो ये कह रहे हैं कि आप किसी को उनकी मर्जी से पुकारें, इस हद तक ले जाएं कि फर्ज कीजिए कि स्टूडेंट आता है, वो कहता है कि जी मैं तो इंसान नहीं बिल्ली हूं, तो मुझे आप बिल्ली समझ के मुखातिब करें, तो अब मैं क्या करूंगा क्लास में, अब मैं उसको कैसे मुखातिब करूंगा, क्या मुझ पर ये लाजिम आता है कि इस स्टूडेंट को मैं बिल्ली तसव्वुर करूं, क्योंकि उनकी अपनी दानिश में ना वो मर्द है ना औरत है ना इंसान है बल्कि बिल्ली है। تو یہ اس قسم کے مسائل جو پیدا ہوئے تو وہ شاید اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے پولی بیئر کہ ایک کلچر ایسا بھی آیا کہ انہوں نے کہا کہ جو شخص جو بھی تصور کر بیٹھا ہے آپ کو بس اسی کو تسلیم کرنا ہے, چاہے وہ سمجھے کہ وہ بلی ہے یا گدھا ہے, آپ نے ان کو ویسا ہی سمجھنا. لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ لوگوں کی عزت کسی بھی معاشرے میں, ہر شخص کی عزت چاہے اس کی رنگ نسل مذہب کچھ بھی ہو, وہ ضروری ہے. کوئی ایسا گورنمنٹ آئے کہ وہ کہے کہ نہیں ہم نے فلاں کی تو عزت کرنی ہے فلاں کی نہیں کرنی, وہ بڑے مسئلے ہوں گے. وہ جو آپ نے بڑے مزے کی بات کی نا, وہ یہ کہ جو کس طریقے سے جو تفریق ہوتی ہے مردوں اور عورتوں کی وہ ہر جگہ ہوتی ہے. امریکہ میں بھی خواتین جو ہیں وہ ڈیموکریٹس کو ووٹ زیادہ دیتی ہیں اور ریپبلکنس کو کم دیتی ہیں, یہ ہمیشہ سے رہا ہے. اسی طرح کینیڈا میں بھی یہ این ممکن ہے کہ لبرلز کا جو ووٹ بینک ہے وہ خواتین میں زیادہ مستحکم ہو کنزرویٹوز کی نسبت. اب اس میں کیا عوامل ہوتے ہیں, عوامل ہوتے ہیں, لیکن خواتین جب ووٹ دیتی ہیں تو وہ یہ دیکھتی ہیں کہ بحیثیت ماں ان کے لیے کیا, کون سی حکومت سہولت پیدا کرے گی, کون سی حکومت ہے جو میٹرنیٹی لیو دے گی, کون سی حکومت ہے جو میٹرنیٹی لیو کو کے ساتھ بینیفٹس دے گی, کون سی حکومت ہے کہ جو ڈے کیئرز کو آسان اور سستا بنائے گی. تو جو گورنمنٹ ایسا کرتی ہیں خواتین کے ووٹس ان کی طرف جاتے ہیں, جبکہ دوسری طرف جو ینگ جو لوگ ہیں یا جو نوجوان مرد ہیں وہ نوکری کی تلاش میں نکلے ہوتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس حکومت کے ہاں بننے سے نوکریاں آئیں گی, کون جو ہے وہ کنسٹرکشن کی نوکریاں نکالے گا, مائننگ کی نوکریاں نکالے گی, آئل اینڈ گیس کی نوکریاں. ظاہر ہے کہ آئل اینڈ گیس میں کم خواتین کام کرتی ہیں, کنسٹرکشن میں بھی کم خواتین کام کرتی ہیں. تو جس گورنمنٹ کی پالیسی کنسٹرکشن کی جانب ہو جھکاؤ ہو, جس گورنمنٹ کی پالیسیز کا جھکاؤ مائننگ اور نیچرل ریسورسز کی طرف ہو, تو وہ گورنمنٹ جو ہیں ان کو نوجوان مرد زیادہ پسند کرتے ہیں, ان کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے. جبکہ جن گورنمنٹس میں خواتین کی پالیسیز کی طرف جھکاؤ ہو وہاں پہ ظاہر ہے کہ خواتین کا جھکاؤ بھی اس طرف ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی فطری ہیں.
اگین یہ بھی اویئرنیس ایک ہے کہ میں ابھی بلکہ ایک صاحب نے کال کر کے کہا کہ وہ مائی کوشچن واز, یہ ڈاکٹر نے بالکل اس کو ایکسپلین کیا ہے, یہ ابیکس کا ڈیٹا جو دسمبر میں ہوا تھا اس سروے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ نوجوان یعنی 30 سے انڈر کے جو لڑکے ہیں مرد ہیں ان کی بڑی تعداد معاشی طور پر ترقی پسند ہے مگر ثقافتی طور پر یعنی ویلیوز کے لحاظ سے دے آر مور کنزرویٹو. اور یہ اس کو ووک ابھی بلکہ ووک کلچر جو ہے اس کے اگینسٹ ہیں, پیئر پولی بھی اگینسٹ ہیں, جیسے یہ تحریکیں ہیں مائی اسپیس مائی پلیس وغیرہ وغیرہ, اس کے حوالے سے نوجوان خواتین کا 11% حصہ جو ہے نا وہ, یہ ابیکس کا میں ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, ان کے جو پولز ہیں اس کے لحاظ سے وہ اگین وہ کہتے ہیں کہ معاشی سطح پر اور ثقافتی سطح پر مردوں کا بیہیویئر انہوں نے دیا ہے کہ وفاقی انتخاب میں سے 18 سے 30 سال کے ووٹرز کی اکثریت نے کینیڈا الیکشن سٹڈی پر وفاقی انتخاب کے بعد اس سے پہلے کیے گئے جو لبرل اور این ڈی پی کی حمایت کی تھی. یہ 2015 کی بات ہے, مگر نہ ہو جو یہ ٹرینڈ چینج ہوا ہے کہ ثقافتی طور پر مرد جو ہیں زیادہ کنزرویٹو ہوتے چلے جا رہے ہیں, خواتین آزادی کی طرف زیادہ بڑھ رہی ہیں. اگین یہ میں نہیں کہہ رہی, میرے پاس ڈیٹا اور اس کی ریسرچ سامنے پڑی ہوئی ہے. 2021 کے انتخاب سے ایک دن پہلے کا جو ڈیٹا تھا 27% نوجوان مردوں اور 29% نے جو ہے وہ ابیکس ڈیٹا پر 18 پوائنٹس کے ڈفرنٹ کے ساتھ, تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ مردوں اور عورتوں کا رویہ بالکل مختلف ہے, مگر آج کے دور میں وہ کہتے ہیں بوتھ آر گوئنگ ان اپوزٹ 180 کے ڈفرنس کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ رویہ وہ کہتے ہیں صرف کینیڈا تک محدود نہیں ہے, مین آر گیٹنگ اور بیکمنگ مور کنزرویٹو, ان کو رہائش چاہیے, ان کو سیکیورٹی چاہیے, ان کو سیفٹی چاہیے. خواتین کی ترجیحات میں یہ چیز شامل نہیں ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف کینیڈا تک کے مردوں تک ہی نہیں ہے بلکہ کوریا امریکہ جرمنی جیسے ملکوں میں بھی نوجوان جو ہیں وہ کنزرویٹو خیالات کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھ رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, میں نے بالکل وضاحت کر دی کہ میں نے کیا پوچھا تھا, آپ نے بھی یقیناً وہی ایکسپلین کیا, اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو آپ کریکٹ کر دیجیے.
نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا. اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, وہ ہے تعلیم. پچھلے 40-50 برسوں میں خواتین میں تعلیم بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور مردوں میں نوجوان مردوں میں تعلیم تیزی سے گھٹ رہی ہے. اور اس کی مثال اس طرح لیجئے کہ کینیڈا کی یونیورسٹی میں اب हमारी कुछ 100 के करीब यूनिवर्सिटियां हैं, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो लोग डिग्रियां लेके निकल रहे हैं उसमें से तकरीबन 60-65% ग्रेजुएट्स खवातीन हैं, यंग लड़कियां, यंग वुमेन, और तकरीबन 35-40% के करीब मर्द नजर आते हैं, ये यंग मैन हैं। जिसके माना ये है कि अब जो लेबर फोर्स है, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट की शक्ल है, उसके स्ट्रक्चर में और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ रही है। अब खवातीन तेजी से वर्कफोर्स में शामिल हो रही हैं, न सिर्फ शामिल हो रही हैं बल्कि उनकी तालीमी काबिलियत मर्दों के मुकाबले में ज्यादा है, लिहाजा उनको मौके भी ज्यादा मिल रहे हैं। और चूंकि मर्द जो है वो अब यूनिवर्सिटी की तरफ कम रागब हैं, जिस तरह के पहले 70-80% लोग जब ग्रेजुएट होते तो मर्द हुआ करते थे, वो 30-35 तकरीबन आधे रह गए, तो वो कंस्ट्रक्शन और दूसरी जॉब्स की तरफ जा रहे हैं कि जो हैं तो बड़ी लुक्रेटिव, लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको इनकम नहीं होगी, यू ओनली गेट पेड फॉर व्हाट यू वर्क फॉर। तो इन हालात में मुझे यूं लगता है कि जो मुआशी इस्तेकाम है, यू नो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो खवातीन यंग वुमेन के लिए बढ़ रहा है, और जो यंग मैन हैं 30 या 30 की दिहाई के जो मर्द हजरात हैं उनके लिए जो है मुआशी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी घट रही हैं। और ट्रंप साहब के आने की बड़ी वजह यही थी कि जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स अमरीका से निकल गई और चाइना और दूसरे मुल्कों में चली गई, तो ये लोग के जो कॉलेज के ड्रॉप आउट से या कॉलेज का या स्कूल में 10वीं 12वीं के बाद आगे नहीं पढ़े, तो उनके लिए फिर नौकरियां भी कम थी मैन्युफैक्चरिंग में, वो ओवरसीज चली गई, ऑफशोर हो गई, तो अब वो नौकरियों के बगैर हैं। तो ये वो रिएक्शन था जिसको आप रस्ट बेल्ट कहते हैं अमरीका की, कि जहां पहले मैन्युफैक्चरिंग थी अब वहां जंग लग रहा है क्योंकि नौकरियां नहीं है। तो वही नौजवान लोग जो फिर वो कंजर्वेटिव होते जाते हैं, जब आपकी तालीम कम हो और आपके पास इक्तसादी और मुआशी वसाइल की महदूद होते जाएं, महदूद तर होते जाएं, तो फिर आप में कदामत पसंदी पैदा होती है। और ये अमरीका में भी हो रहा है, ये कैनेडा में भी हो रहा है, ये दुनिया भर में होगा।
बड़ी सेफ गेम कर गए आप, बड़ी सेफ गेम कर गए हैं। यानी वो कहते हैं ना, कनाडा में रहना है तो एक अब वो जो एबोरिजिनल्स हैं उनके साथ हो तो ज्यादती रही है, ट्रू नॉर्थ के लोगों का जिस वक्त बयान पड़े, मगर हम उनकी फेवर जरूर करते हैं, उनका जिक्र जरूर करते हैं। तो आपने भी खवातीन को अपर हैंड दे दिया, भाई बहुत पढ़ लिख गई है।
सीरियसली अगले 20 वर्षों में जब आप किसी दफ्तर में दाखिल होंगी तो उसमें आपको तकरीबन 60-65% खवातीन नजर आएंगी और मर्द कम नजर आएंगे। ये तो सिंपल डेमोग्राफिक का अमल है, हमारे यहाँ मर्द कम से कम पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटियों से ग्रेजुएट कम हो रहे हैं, तो वो 15-20 साल में उसकी शक्ल आपको सामने सड़कों पर और दफातर में नजर आएगी। और फिर जो है जब भी आप देखें कि किसी मर्दों को जब नौकरियां नहीं मिलती, आज से कई 100 बरस पहले जब मशीनें आई थी तो इंग्लैंड में, तो वो जो लडाइट्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि अच्छा पहले तो हम अपने हाथों से ये कपड़े बुनते थे, अब ये मशीनें आ गई, उन्होंने जाके रात को ना मशीनें तोड़ना शुरू कर दी। ये 1500 या 1400 के जमाने की बातें, उन्होंने वो मशीनें जो लूम्स थे जो कपड़े बनाते थे उनको तोड़ ताड़ के आग लगा दिया, दैट उनको कहते हैं लडाइट्स। वो ये डर रहे थे कि यार कल से हमें नौकरियां नहीं मिलेंगी, आज इन मशीनों को आग लगा दो। तो ये कदामत पसंदी से आती है। और जो बड़ा मसला है वो तो अभी आपने हमने छेड़ा नहीं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का,
उसकी तरफ भी आ जाते हैं, मैं उसकी तरफ आने लगी हूँ, मगर आप इस बात को हम लेके चल रहे हैं मेरे अगले प्रोग्राम के लिए। जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब भी यहाँ मौजूद है, और आई डेफिनेटली वुड लाइक टू एड्रेस दिस इश्यू फर्स्ट। अभी डॉक्टर साहब जब आपने बात की ना, मैंने आपसे कहा कि आप अपने आप को सेफ कर गए हैं, आप खवातीन की तरफदारी करके चले गए,
घर भी जाना है।
मगर आपको मैं बताती हूँ कि यस अभी किसी हद तक दुरुस्त भी है कि मर्द क्योंकि तालीम में पीछे रहते चले जा रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा कदामत पसंद होते चले जा रहे हैं। और वो कहते हैं पिछले कुछ अरसे में मर्दों का ये जो 180 डिग्रीज पे नई जनरेशन के लोग कंजर्वेटिव होते जा रहे हैं और लड़कियां जो हैं वो मोर लिबरल होती चली जा रही हैं, इसमें वो कहते हैं मी टू, ब्लैक लाइफ मैटर्स, माई स्पेस, इट्स माई राइट, और ये तमाम तहरीकें खवातीन की तरफ से निकली हैं। आई थिंक इस चीज ने भी थोड़ा सा ऑफेंड किया है और बिल्कुल दो एंड्स बन गए। दूसरी बात डॉक्टर साहब, अभी आपने एक लफ्ज कहा कि आते दिनों में आपको लड़कियां, मैं खुद औरत हूं और मेरा ख्याल है कि मुझे زندگی میں میرے والد صاحب نے، میرے بھائی نے، میرے شوہر نے، میرے خاندان کے مردوں نے مجھے پورا کا پورا چانس دیا کہ بلکہ اللہ جنت نصیب کرے مظفر کی والدہ کو کہ آئی ہیڈ اے گورنمنٹ جاب، دیر واز اے ٹائم کہ میں نے گورنمنٹ جاب چھوڑ کے چھٹی لے کے گھر بیٹھ گئی تھی، اللہ تبارک وتعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، انہوں نے ایک دن مجھے بلایا اور مجھے کہنے لگی کہ تم گھر بیٹھو گی تو دا اونلی تھنگ وٹ یو ول ڈو از فیملی پالیٹکس، اینڈ یہ اس زمانے میں پاکستان میں فون فری ہو گیا تھا. انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہوگا کہ تم سوائے فیملی پالیٹکس کے اور کچھ بھی نہیں. میں نے ساری زندگی کام کیا، آپ اپنے میاں کا ہاتھ بٹ، اور پریکٹیکلی شی واز اے ویری لبرل وومن، مور دین لبرل جو مظفر کی والدہ تھی. اب یہاں جو میں اس بات کو کہہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب، آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں، آج کے ینگ امریکہ نے ڈی ای آئی کو ختم کیا ہے جو کہ ڈائیورسٹی انکلوژن اور وہ تین ایکویٹی، ٹھیک ہے، انہوں نے ختم کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہر انسان کا جو پاکستان میں ایک ہوا کرتا ہوتا تھا وہ جو بیکورڈ ایریے سے آیا تھا اس کو آپشن ملا کرتی ہوتی تھی. یہاں کینیڈا میں اگر آپ دیکھیے گا کہ بعض اوقات ینگ جنریشن اس بات پہ چیخ رہی ہے، آپ تو یونیورسٹی میں ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سے ڈاکٹرز میں زیادہ لڑکیاں ہیں، لڑکے کم ہیں، ٹھیک، لڑکیاں اٹس اے سیف پروفیشن، ہیومینٹی کا پروفیشن کنسیڈر کیا جاتا ہے، بہت سارے اور پروفیشنز ہیں وہاں پر لڑکیوں کو وہ ڈی ای آئی کی بنیاد پہ ان کو پرائیورٹی مل جاتی ہے. لڑکیاں زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، لڑکیاں زیادہ کیئرنگ ہیں، لڑکیاں زیادہ ریسپانسبل ہیں، میں 100% اس بات کو مانتی ہوں. بٹ ینگ جنریشن میں، ینگ بوائز میں یہ فرسٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ میں انجینئر ہوں، میری کلاس کے بیچ میں 270 لڑکے ہیں، دو لڑکیاں